Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
जब अंकुरित होती है धीरे 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 बढ़ती है बढ़ते बढ़ते उस पर फूल और फल लग जाते हैं दाने पैदा हो जाते हैं फसल पक जाती है और जब फसल पक जाती है दाने तैयार हो गए इसके बाद वो फसल सूख जाती है। एक दाना फसल पकते वक्त अनेक दानों को सिद्ध करके और फसल के रूप में जो आया था वो सूख जाती है और वही दाना जब वापस जमीन पर गिरता है तो और अंकुरित हो जाता है फिर फसल खड़ी हो जाती है। तो जैसे फसल पक करके झड़ जाती है और झड़ करके फिर वापस अंकुरित हो जाती है फिर वही फसल तैयार हो जाती है वैसे के वैसे हरियाली आ जाती है। बस संसार में जीव का भी यही तो हाल है पिताश्री। ये शरीर जब पक जाता है भगवान गीता में यही तो बोलते हैं ये जो शरीर है ये जब पक गया है तो इसका तो ह्रास होगा ये जिससे बना है वापस उसमें मिल जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले अव्यक्त थे बीच में व्यक्त हो गए फिर अव्यक्त होना है और जो अव्यक्त हुआ है फिर से प्रकट भी होना है। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उसका शरीर धारण करना अवश्यंभावी है। उसको जन्म यथाकर्म यथाश्रुत लेना ही पड़ेगा। तो जो अवश्यंभावी घटना है उसको लेकर के कभी डरना नहीं चाहिए। शरीर का वियोग आज हो या युगों के बाद अध्येव वा मरण मस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलंती पदम न धीरा निंदंतो नीति निपुणा यदि वास्तुनवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। सज्जनों नीतिकार कहते हैं कि ये दुनिया के लोग चाहे आपके निंदा करें या भले ही स्तुति करें निंदंतु नीति निपुणा यदि वास्तुनवंतु नीति निपुण लोग आपकी निंदा करें या आपकी प्रशंसा आपकी स्तुति करें आज ही लक्ष्मी आवे या चली जाए अध्येव वा मरणमस्तु युगांतरे वा आज ही मृत्यु आ जाए या युगों के बाद में मृत्यु आवे मगर जो धीर पुरुष होता है नीतिकार पुरुष होता है नीति का पालन करने वाला पुरुष होता है वो उस न्याय नीति से कभी भी विचलित नहीं होगा। निंदा करें तो उसकी चिंता नहीं स्तुति करें तो उसका गर्व नहीं लक्ष्मी आवे तो उसकी कोई प्रसन्नता नहीं चली जावे तो उसका कोई खेद नहीं। मृत्यु अभी आ जाए चाहे युगों के बाद में आवे वो अपना ज्यों काम करे परंतु व्यक्ति न्याय के मार्ग का कभी त्याग नहीं करता है कौन वो धीर पुरुष। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा धीर पुरुष न्याय के उस मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं वो अपने न्याय पथ पर ही चलेंगे। इसलिए पिताश्री मेरी यही प्रार्थना है कि ये जो न्याय पथ है ये धर्म पथ है कर्तव्य पथ है उसका आप त्याग न करें। अपने मुंह से जो निकला हुआ शब्द है निकला हुआ वाक्य है अक्षर से उसको सत्य सिद्ध करें इसी में कल्याण है। कितना सुंदर विवेक नचिकेता अपने पिता को दे रहे हैं। जीवन और मरण तो चलता है। हमारे महाराष्ट्र जी एक अच्छी बात सुनाते थे पुराने लोगों को कभी कभी देखा करते थे, किसी व्यक्ति के संबंध में कोई शक हो गई, कोई संदेह हो गया, इसने झूठ बोला है, इसने चोरी किया है, इसने कुछ अन्याय किया है, कोई गलत कार्य मर्यादा विरुद्ध किया है, अब उस व्यक्ति को खुलवाने के लिए कि तुमने किया है, वो स्वीकार करे इस बात को, संदेह है क्योंकि अभी स्पष्टीकरण नहीं है कि इसी ने किया है, तब कई सामाजिक लोग, श्रेष्ठ लोग एकत्रित होते थे, जिसको बोलते हैं पंचसभा, पंचायत, और वो इकट्ठे होकर के बुजुर्ग लोग उस व्यक्ति को सामने खड़ा करके पूछते हैं, ये गलत कार्य तुमने किया, तुमने झूठ बोला, तुमने चोरी किया, तुमने अन्याय किया, सच सच बोलो तो तुम्हें क्षमा कर सकते हैं, और झूठ बोलोगे तो जब बात प्रत्यक्ष खुलेगी उसका दंड तुम्हें दुगना भोगना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जिस पर संदेह हो रहा है वो बोलता है, मैं आपसे सत्य बोल रहा हूं, विश्वास करिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं भी तो परिवार वाला व्यक्ति हूं, बाल बच्चों वाला व्यक्ति हूं, आप मेरे पर विश्वास करिए, मैं असत्य नहीं बोल सकता। उस व्यक्ति को यह था कि यदि मैं असत्य बोलूंगा तो उसे असत्य को यह तो नहीं समझ पाएंगे, मगर देखने वाला ईश्वर भीतर बैठ करके देख रहा है, और उस असत्य भाषण का जो फल होगा, प्रत्यवाय होगा, उसका परिणाम बड़ा खतरनाक होगा, मेरा नहीं तो कहीं मेरे परिवार में मेरे प्रियजनों के साथ अनिष्ट हो सकता है, किसी का वियोग हो सकता है, किसी को रोग हो सकता है, कोई बुरा कार्य हो सकता है, मैं नहीं तो मेरे परिवार पर विपत्ति आ सकती है, इसलिए मैं असत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं परिवार वाला व्यक्ति हूं, मैं सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे परिवार की भी चिंता कर रहा हूं, इसलिए असत्य नहीं बोल सकता। पुराने लोगों को इस बात का भय होता था कि असत्य का परिणाम ठीक नहीं होगा, मैं अथवा मेरों के साथ में कुछ न कुछ अनिष्ट हो सकेगा, हो जाएगा, इसलिए सत्य ही बोलना चाहिए, असत्य बोलना ठीक नहीं। ये प्राचीन बात आपको बता रहा हूं, मगर आज यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संदेह हो जाए और उसको ऑफिस में खड़े करके सामने से सेठ पूछे, मैनेजर पूछे, तुमने चोरी की, झूठ बोला, वो व्यक्ति क्या कहेगा? सर आप जानते हैं, समय को जानते हैं, इस समय में सच बोलने वाला व्यक्ति भूखे मरता है, मैं कैसे आपको सही कहूं, कुछ तो करना पड़ता, मरता क्या न करता, मैं भी तो परिवार वाला हूं। दिल्ली में एक सत्संगी भक्त है, काफी बुजुर्ग हो गए बेचारे, वो कहते हैं स्वामी जी जब भी मैं रिटर्न भरने के लिए जाता हूं तो हमारे वकील कहते हैं कि ये हिसाब गलत है तुम्हारा, तो मैं उनको साफ बोलता हूं हां बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं है, पर आपको सही करके मानना पड़ेगा, जो आपको लेना है वो लीजिए, पर हिसाब गलत है, अगर मैं गलत नहीं करूंगा तो मेरा परिवार है, मैं कैसे काम चलाऊंगा, परिवार वाला हूं। आज दुहाई दी जाती है कि परिवार वाला हूं, कुटुंब वाला हूं, सत्य पालन करके कुटुंब का निर्वाह नहीं कर सकता हूं, इसलिए असत्य बोलना पड़ेगा, गलत करना पड़ेगा, न्याय पर चलकर के निर्वाह संभव नहीं है, झूठ भी बोलना पड़ेगा, अन्याय भी करना पड़ेगा, ठीक प्राचीन धारा से विपरीत धारणा हो गई, एक विपरीत मान्यता हो गई, लेकिन शिष्ट पुरुषों के लिए शोभनीय नहीं है। यहां व्यक्ति असत्य बोल करके भी ईश्वर के यहां तो सर्वथा दोषी ही रहेगा, इसलिए यहां पर नचिकेता ने बड़ी गंभीर बात निवेदन की, जो पूर्व में हो चुके हैं और उनका अनुपालन करने वाले शिष्ट पुरुष वर्तमान में भी है, उन सबको देखते हुए पिताश्री सत्य का ही व्यक्ति को पालन करना चाहिए और मृत्यु आदि से कतई डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जब बालक ने इतने विवेकपूर्ण बात अपने पिता को निवेदन की तब उनकी विवेक दृष्टि खुली और अपने मुंह से निकले हुए वाक्य को सत्य करने के लिए तैयार हो गए। सज्जनों, यह है अपने से बड़ों को भी सद्मार्ग में लगाने की पद्धति। इंसान यदि संसार में कोई भी पैदा हुआ है तो सर्वथा निर्दुष्ट नहीं हो सकता है। कोई न कोई दोष, कोई न कोई बुराई, कोई न कोई कमी किसी भी व्यक्ति में हो सकती है, मगर यदि अपने कमी निकालने वाला कोई भी पुरुष प्राप्त होता है तो उसकी बात को जरूर स्वीकार करना चाहिए। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होई, परो अपावन ठोर पर कंचन तजे न कोई। यदि गटर के गंदे पानी की नाली में स्वर्ण पड़ा हुआ है तो व्यक्ति उसको देख करके छोड़ देगा कि यह गंदे नाले में गिरा पड़ा है, यह उठाने जैसा नहीं है, कोई छोड़ेगा नहीं। कहीं भी पड़ा है, स्वर्ण है, हमको गंदगी नहीं उठानी है, हमें तो स्वर्ण लेना है, साफ करके इसको ग्रहण करना है। ऐसे ही विद्या चाहे अपनों से बड़ों में हो या अपनों से छोटों में हो या अपने समान वालों में हो, यदि धारण करने की शिक्षा है तो उसको जरूर लेनी ही चाहिए, अवश्य उसको ग्रहण करना चाहिए। यह शास्त्र में नियम नहीं है कि छोटा बूढ़ों को ज्ञान न दे, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो भागवत के प्रसंग में आपने देखा, कई बार सुना, जब आत्मदेव ब्राह्मण ग्लानी से भरे हुए हैं, ऐसी स्थिति में उनका दुख मिटाने का उपाय उन्हीं का पुत्र गोकर्ण सोचता और पिता को उपदेश देता है, ममता का त्याग करो, शरीर शरीर के संबंधी और साधनों की ममता का त्याग करो, वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ, आप भक्तिनिष्ठ हो जाओ, भगवत भजन में लग जाओ, वैराग्य धारण करो। पुत्र उपदेश दे रहा है, दे सकता है, अशास्त्रीय बात है, कभी पुत्र न भी सुने चलेगा। भागवत का ही उदाहरण देखिए, जब सुखदेव जी महाराज प्रवर्जन कर रहे हैं और पीछे से मोह में आबद्ध व्यास जी महाराज दौड़ रहे हैं, पुत्र 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 करके चिल्ला रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया, मानो पुत्रमय ही बन गए हैं। ऐसा लग रहा था कि सुखदेव प्रवर्जन नहीं कर रहे हैं, मानो व्यास का घर छूट रहा है, इतने तन्मयता हो चुकी है, अभिस्वंग हो चुका है, अपनापन हो चुका है। और जब चिल्ला रहे हैं फिर भी लौट करके सुखदेव जी ने कोई जवाब दिया, देखते हैं कि ये ममता है, ये मोह है, ये विवेक नहीं है। यदि विवेक रहित तो कोई बात अपने से बड़े भी कर रहे हों तो जरूरी नहीं है कि विवेक रहित बात को ग्रहण किया जाए, उसको स्वीकार किया जाए, लेकिन ये आपका आदेश अविवेकपूर्ण है, इस बात का बोलने वाले को एहसास हो जाना चाहिए। ये छोटे वाले का कर्तव्य बनता है कि ये करने योग्य कर्म नहीं है, करने योग्य आचरण नहीं है, ये बोलने योग्य भाषा नहीं है, ये धर्म शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। एक शिष्टाचार का पालन करते हुए छोटा भी बड़ों को अपनी बात बोल सकता है, इस प्रसंग को देखने से बात स्पष्ट है। इसलिए उन्होंने निवेदन किया और तब पिताश्री तैयार हो गए अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए और उन्होंने स्वीकृति प्रदान की यमराज के पास जाने के लिए। और जब पिता की स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त हो गई। नचिकेता उसी समय यमराज के द्वार पर पहुंच गया। दूसरी बार, एक बार तो तब पहुंच गया था जहां कठोपनिषद प्रारंभ ही नहीं हुआ, वो बात मैंने आपको प्रारंभ में निवेदन की थी। आज फिर दोबारा यम द्वार पर नचिकेता पहुंच जाता है। संयोग ऐसा रहता है कि जब नचिकेता यम द्वार पर पहुंचा, उस वक्त यमराज कहीं प्रवास में गए हुए हैं, कहीं बाहर गए हुए थे, और नचिकेता के वहां पहुंचने पर यमराज के जो अन्य परिजन थे उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण बालक द्वार पर आया है, तो उसका सत्कार किया जाए। मगर नचिकेता की प्रतिज्ञा थी कि मेरे पिता ने मुझे यम के पास में भेजा है, तो जिसके लिए भेजा है, जिनके पास में भेजा है, मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं उसको पूरा करूं, मैं उनसे मिलूं, उसी के बाद कोई दूसरी बात सोची जाएगी, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है। जिस कार्य के लिए आया था पहले वो बात करनी है। यह भी एक शिष्टाचार है। जिस किसी व्यक्ति को यदि कहीं प्रेषित किया जाता है, विशेष डाक लेकर के, समाचार लेकर के, कोई उद्देश्य लेकर के, तो जाने वाले का कर्तव्य बनता है कि यदि कोई दूसरा कार्य भी हो तो उसको महत्व न दे, जिसके लिए गया है उस कार्य को ही प्राथमिकता देने चाहिए, पहले मेरा वही काम होगा, बाकी सब फिर सोचा जाएगा। इसी दृष्टि से नचिकेता जब यम द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने आतिथ्य स्वीकार ही नहीं किया, जो सत्कार किया जा रहा उसको स्वीकार नहीं किया, न खाया है न पिया है, बस द्वार पर बैठे हैं, खड़े हैं। खड़े खड़े तीन रात्रि व्यतीत हो गई। तीन रात्रि के अनंतर जब यम लौट करके आते हैं और जब अपने भवन में प्रवेश किया तो यम के जो गृहणियां स्त्रियां थी, पत्नियां थी, और अन्य जो मंत्री आदि थे, परामर्शदाता थे, उन सब लोगों ने यमराज से कहा, आप तीन रोज से बाहर थे, पीछे से एक ब्राह्मण बालक अतिथि बनकर के आया है और न खाया है और न पिया है, कोई सत्कार स्वीकार नहीं किया, इसलिए पहले उसका सत्कार होना चाहिए। इस बात को अगले मंत्र में बता रहे हैं। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर् ब्राह्मणो गृहान् तस्येताम् शान्तिम् कुर्वन्ति हरवेवस्वतोदकम्। परिजन, महारानिया आदि यमराज को कहने लगे, हे वेवस्वत, हे सूर्यपुत्र, यम सूर्यपुत्र है, यम घबराने वाली चीज नहीं है, क्यों डरे? डरता तो वो है जिसने गलत काम किया है, चोर है वो पुलिस को देख करके ही घबरा जाता है, कोर्ट में खड़ा होकर के ही घबरा जाएगा, लेकिन सर्वथा निर्दोष व्यक्ति को कहीं भी खड़ा कर दीजिए, उसको किस बात का डर? ये जो यमराज है कोई डराने वाले नहीं, ये तो सत्कार करने वाले हैं, मर्यादा का पालन करने वाले हैं, इसलिए इनके परिजनों ने कहा, देखिए वैश्वानर प्रवेशति अतिथि ब्राह्मण हो गृहान। ब्राह्मण अतिथि जब किसी के घरों पर आते हैं तो वो वैश्वानर अग्नि होकर के आते हैं, वैश्वानर अग्नि होकर के, और अग्नि का स्वभाव यदि उसको शांत नहीं किया जाए तो जहां प्रकट होगी उसको जला देगी, इसलिए कर्तव्य बनता है कि अग्नि को शांत किया जाए, नहीं तो जिस घर में प्रविष्ट हुई है उस घर को ही जला डालेगी, घर वाले को बेघर कर देगी, ये ब्राह्मण जो अतिथि हैं, ये ब्राह्मण अतिथि भी वैश्वानर अग्नि है। ये वैश्वानर अग्नि द्वार पर खड़ी है तीन रात्रि से आपसे मिलने के लिए, इसलिए एक काम करिए, उस अग्नि को शांत करिए। क्योंकि अतिथि जैसे अग्नि तेजस्वी होती है, ऐसे ही अतिथि है जैसे अग्नि जलाने की क्षमता रखती है। यदि अतिथि सत्कार न हुआ तो सत्कार नहीं करने पर जो प्राय पाप लगेगा, वो पाप वो प्राय यदि उसका प्रायश्चित नहीं किया जाए तो अतिथि के घर को जला डालेगी, अनिष्ट कर डालेगी। इसलिए आप जाइए और पहले उस अग्नि को शांत करिए। कौन है अग्नि? ये नचिकेता अग्नि है, ब्राह्मण है, ये अतिथि अग्नि है, ये नाचिकेत अग्नि है, इसको शांत करिए। तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति, ये जो सत्कार है उनकी शांति करते हैं। उनसे निवेदन करिए, पाद्य अर्घ्य आदि दीजिए, आसन दीजिए। हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि अतिथि का सत्कार करें, और कुछ नहीं तो सबसे प्रथम मधुर भाषा के द्वारा, आइए आइए, विराजिए, आसन स्वीकार कीजिए। इतना तो हर व्यक्ति सत्कार कर ही सकता है। नीतिकार कहते हैं कि वाणी में दरिद्रता किस बात की? आपके पास और कुछ भी सत्कार में देने के लिए नहीं है, चलेगा, परंतु वाणी तो पहले से ही ईश्वर ने देकर के भेजी है। शब्दों के द्वारा तो अतिथि का सत्कार किया ही जा सकता है, और बैठने के लिए उनको भूमि और कुछ नहीं तो घास फूस का आसन तो मिल ही सकता है, तृण तो मिल ही सकता है। घास का भी आसन हो, कुशा आसन भी हो, चलेगा। अतिथि को बैठने के लिए निवेदन कर सकते हैं, और आपने कुछ भी कमाई नहीं की है तो पीने के लिए जल तो ईश्वर ने सबको दिया है, एक जल का गिलास भर करके निवेदन कर सकते हैं, जल स्वीकार कीजिए। अतिथि का सत्कार जरूर होना चाहिए। ये पाद्य है, आसन अर्घ्य आदि है, ये साधन इस अग्नि को शांत करते हैं। तैसे एताम शांतिम कुर्वन्ति, ये जो साधन है अर्घ्य पाद्य आसन आदि, ये उस अग्नि को शांत करने वाले हैं। यही कारण है कि हे सूर्य पुत्र उदकम हर, उनके लिए आप जल लेकर के जाइए और उस अतिथि का सत्कार कीजिए। सत्कार के द्वारा उस अग्नि को आप शांत कर दीजिए। यदि किसी के घर पर कोई अतिथि आए हैं और समुचित भाषा आसन जल आदि के द्वारा सत्कार नहीं किया जाता है तो उसका बड़ा प्रत्यवाय लगता है, बड़ा दोष लगता है, इतना बड़ा अनिष्ट हो जाता है। जिस अनिष्ट का विचार कल इस मंच से आप सुनोगे, जहां अतिथि का सत्कार नहीं होता है उसको कई प्राप्त साधन सुविधाएं सम्मान आदि कैसे नष्ट हो जाते हैं, इस बात को यम के परिजन और मंत्रीगण यमराज को कह रहे हैं कि अवश्य आप उस नचिकेता रूपी अतिथि का, उस ब्राह्मण अग्नि का सत्कार कीजिए, नहीं तो ये सारे के सारे प्राप्त जो भोग सुख हैं ये सब नष्ट हो जाएंगे। जो नष्ट क्या हो सकते हैं? अतिथि का सत्कार नहीं करने पर जो अनिष्ट सामने आ सकता है वो क्या होगा, उसका विचार तो कल ही हम लोग कर पाएंगे, घड़ी मना करती है। बड़ा सुंदर विचार आ रहा है, ये व्यवहारिक शिक्षा दी जा रही है। इसलिए सज्जनों कठोपनिषद केवल परमार्थ स्वरूप का बोध कराने वाली मात्र श्रुति नहीं है, ये तो व्यवहार और परमार्थ दोनों में ही आपको कुशल बनाने की विद्या है। इसलिए निवेदन है कि समय पर आकर के जरूर इसको श्रवण करना चाहिए, और कल इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति।